व्यवस्था विवरण अध्याय 25। अध्याय 25 में ये रोचक नियम विहित है। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वो उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 1-3 पद। न्याय की संख्या 40 है, अतः दया दर्शाने के लिए उन 40 कोड़े लगाए जाते थे। 40 से अधिक कोड़े लगाना मना था। यीशु को 39 कोड़े मारे गए थे। एक कोड़े की मार क्षमा कर देना उनके लिए बड़ी दया का प्रदर्शन होता था। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। व्यवस्था विवरण 25:4। वो बैल जितना खा सकता है उसे खाने दे, चाहे वो सब खा जाए। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उसे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वो उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इसराइल में से मिट न जाए। व्यवस्था विवरण 25:5-6 पद। नाम चलाने के लिए ये एक अच्छा प्रावधान था। इस प्रकार उत्पन्न पुत्र मृतक भाई का नाम प्राप्त करेगा। यदि मृतक का भाई उसकी पत्नी से विवाह न करना चाहे, तो वो सियानों के सामने अपनी भाभी को अपनी जूते दे तथा वो स्त्री उसके मुंह पर थूके, तो उसके भाई की पत्नी उस वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे, उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इसराइल में उस पुरुष का ये नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। व्यवस्था विवरण 25:9-10 पद। इस प्रकार आप इसराइल में खलनायक बन जाते हैं, एक ऐसे अप्रिय जन जो अपने भाई के उत्तरदायित्व को पूरा न करे कि उसका नाम चलता रहे। आपके लिए सदा यही कहा जाएगा, जूता उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए। व्यवस्था विवरण 25:11 पद। ये निर्भर करता है कि वो बीच बचाव कैसे करे, वो बड़ी समस्या में पड़ जाएगी। अपनी थैली में भांति भांति के, अर्थात घटती बढ़ती भटकेरे न रखना। व्यवस्था विवरण 25:13 पद। उनके पास तराजू होते थे। उनका आम अभ्यास ये था कि वे माल खरीदने के लिए अलग भटकेरे रखते थे, बेचने के लिए अलग रखते थे। इसराइल के लिए ये परमेश्वर द्वारा स्थापित मानक था कि एक प्रकार का बटकरा क्रय बिक्री में काम लिया जाए, न कि खरीदने के लिए भारी और बेचने के लिए हल्के। अलग अलग बटकेरे रखना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित कार्य था। वे लोग इसके दोषी थे। अपने घर में भांति भांति के, अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। व्यवस्था विवरण 25:14-15 पद। परमेश्वर चाहता है कि परस्पर व्यवहार ईमानदारी का हो, धोखाधड़ी और बेईमानी ना हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। व्यवस्था विवरण 25:16। पद 17 में परमेश्वर कहता है, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मंदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वो तेरे भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। व्यवस्था विवरण 25:17-19 पर। अमालेक एक दुष्ट व्यक्ति था, उन्हें अमालेक का सर्वनाश करना था, ये सदा स्मरण रख, क्योंकि उसने तुम पर धोखे से और पीछे से वार करके दुर्बल लंगड़े रोगी और पीछे पीछे आते हुए थके मंदों आदि सब का नाश किया था। उसकी ये रणनीति बड़ी नीच प्रवृत्ति की थी, अतः उन्हें अमालेक का ये कुकर्म स्मरण रखकर एक दिन उसका सर्वनाश करना था। आपको ध्यान होगा कि शमूएल ने शाऊल से कहा था कि वो जाकर अमालेक का नाम पृथ्वी पर से मिटा दे, कोई जिंदा ना बचे। बाइबल की प्रतीकात्मक व्याख्या बड़ी रोचक है। अमालेक देहिक लालसाओं का प्रतीक है जिसका संपूर्ण विनाश होना है, कुछ भी ना बचे, अन्यथा आप समस्या में पड़ जाएंगे। अब शाऊल ने क्या किया कि स्वस्थ मावेशी और भेड़ बकरियों को बचा लिया तथा राजा को जीवित बंदी बना लिया, शेष सब का उसने सर्वनाश कर दिया था। जब वो लौट कर आया तब वृद्ध शमूएल उसके पास आया। शाऊल ने कहा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया है। शमूएल ने उससे पूछा, मुझे पशुओं की वाणी सुनाई देती है, ये पशु किसके हैं? शाऊल ने कहा, ये हष्ट पुष्ट पशु है, अतः मैंने उन्हें परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए रख लिया है। शमूएल ने उससे कहा, बलि चढ़ाने से आज्ञा पालन उत्तम है, ये तेरी मूर्खता है, परमेश्वर ने तुझे राजा के पद से हटा दिया है। 1 सैमुएल 15 परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी थी कि वो अमालेकियों का सर्वनाश कर दे, मनुष्य पशु आदि सब का, परंतु शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो अमालेकियों का सर्वनाश कर दे। बाइबल में अंतिम अमालेकी कौन था? एस्थर की पुस्तक का हामान, जिसने यहूदियों का सर्वनाश करने का षड्यंत्र रचा था। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर देहिक लालसाओं का सर्वनाश नहीं करते हैं तो वे पुनर्जीवित होकर आपका नाश कर सकती है। यही कारण था कि परमेश्वर ने अमालेक के सर्वनाश की आज्ञा दी थी। व्यवस्था पर ध्यान लगाएं और याद रखें कि अमालेक ने क्या किया था। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वो तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 19 पद। शौल की एक चूक से यहूदियों के सर्वनाश की स्थिति आ पहुंची थी। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने पहले ही एस्थर को रानी बना दिया था कि वे बचाए जाए। अमालेक की कहानी बाइबल भी प्रतीकात्मक व्याख्या से और अधिक रोचक बन जाती है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर विशेष रूप से रहे। आने वाला समय आपके लिए मनन का समय हो कि मसीह ने पृथ्वी पर आकर आपके लिए क्या किया। परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिया अर्थात उसका इकलौता पुत्र, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, उन पर भी विचार करें। अतः ये समय हमारे लिए परमेश्वर द्वारा हमारी सुधि लेने पर मनन करने का समय हो कि वो हमारी कितनी चिंता करता है। वो आपकी चिंता करता है और आपसे इतना अधिक प्रेम करता है जिसको आप कभी नहीं जान पाएंगे। वो चाहता है कि आप उस प्रेम को अंत ग्रहण करें और उसका अनुभव प्राप्त करें। अतः आपका समय परमेश्वर के उमड़ते हुए प्रेम के अनुभव का समय हो। उसे बस बहने दीजिए, ऐसा ही होने दीजिए यीशु के नाम में।